प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन स्वर्गीय जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति ये जीवित वचन सबसे उत्तम ज्ञान यही है आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम नए नियम से प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 19वें अध्याय को आरंभ करेंगे और इसी के साथ प्रेरित पौलुस की तीसरी यात्रा के आरंभ होने का विवरण भी पढ़ेंगे। इस तीसरी यात्रा में संत पौलुस अंताकिया में कुछ दिन ठहरकर गलातिया और फ्रूगिया की कलीसिया से भेंट करते हुए इफिसुस नगर पहुंचते हैं और इस प्रकार प्रेरित पौलुस ने अपनी तीसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा को 18वें अध्याय के 23वें पद से आरंभ कर दिया था और इस अध्याय में भी वह इस यात्रा को जारी रखेंगे। प्रेरित पौलुस जहां जहां कलीसियां स्थापित करते उनके पास भेंट करने अवश्य जाते तथा उन्हें विश्वास में स्थिर करते थे। जब वे इफिसुस गए तो वहां तरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन वहां के विद्वानों से तर्क वितर्क किया करते थे और ये कार्य 2 वर्षों तक चलता रहा। पौलुस के द्वारा जो सामर्थ्य के कार्य परमेश्वर द्वारा दिखाए जाते उनके कारण देमेत्रियुस नामक सुनार उनके विरुद्ध हो गया और मंदिर के मंत्री ने झगड़े को शांत किया और उन्हें परामर्श दिया कि यदि उन्हें कुछ कहना है तो वे न्यायालय जाएं, वहां राज्यपाल से बात करें, क्योंकि इन मनुष्यों ने हमारी कोई हानि नहीं की। तो इस प्रकार से इस सुनार ने तो झगड़ा उत्पन्न किया किंतु मंदिर के मंत्री ने उस झगड़े को शांत कर दिया। वास्तव में हानि इस सुनार को ही हो रही थी क्योंकि इसका व्यापार प्रतिमाएं बनाना था। ये इफिसुस की अर्तिमिस देवी की मंदिर को बनाता था, चांदी का मंदिर ये बनाता था और बेचता था। सो इसलिए पौलुस के प्रचार से इसके व्यापार को हानि हो रही थी, इसलिए ये उनका विरोधी हो गया था और इस बात को वहां मंदिर के मंत्री ने समझ लिया था। सो आइए इसी परिचय के साथ हम 19वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने, ग्रहण करने और इस पर विश्वास लाने में आप हमारी सहायता करें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा हुआ है, प्रभु आप उसकी सहायता करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो मित्र हमारे साथ देखें प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक उसका 19वां अध्याय 1-7 पद। इन पदों में इस प्रकार से वर्णन है। पहले पद में लिखा है, ऐसा हुआ कि जब अपोल्लुस क्रंथुस में था तो पौलुस ऊपर के प्रदेश से होता हुआ इफिसुस में पहुंचा और वहां पर उसे कुछ चेले मिले। मित्र, आपको स्मरण होगा कि अपनी दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा में पौलुस इफिसुस होते हुए वापस लौटे थे, और उस समय उन्होंने वहां के लोगों से कहा था कि यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं पुनः तुमसे भेंट करूंगा। और उस समय प्रेरित पौलुस ने वहां कोई सेवा नहीं की थी, परंतु अब जब वह इफिसुस पहुंचे हैं तो उनसे पूर्व एक महान सेवक अपोल्लोस ने वहां परमेश्वर का वचन सुनाया। आपको स्मरण होगा कि अपोल्लोस यूहन्ना के बपतिस्मे के अतिरिक्त और अधिक जानकारी इस क्षेत्र में नहीं रखते थे। वे पवित्र शास्त्र का ज्ञान तो रखते थे, परंतु मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के विषय में इस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं थी। संत पौलुस के अनुसार उसने मसीह के साथ मारे जाने तथा जी उठने के अनुभव को नहीं प्राप्त किया था। दूसरे शब्दों में अपोल्लोस मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के विषय में नहीं जानता था। परिणाम स्वरूप उसने केवल यूहन्ना बपतिस्मादाता के बपतिस्मे के विषय में उन्हें निर्देश दिए, उन्हें सिखाया। प्रेरित पौलुस ने भी जान लिया कि उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में भी नहीं सुना है। जब उन्होंने मसीह के विषय में नहीं सुना तो वे पवित्र आत्मा के विषय में भी नहीं सुन सकते। तब दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, नहीं, हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा है। मित्रवर, प्रेरित पौलुस ने उनसे पूछा कि जब तुमने बपतिस्मा लिया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उनका उत्तर था कि उन्होंने इसके विषय में कभी सुना भी नहीं है। उन्हें केवल यूहन्ना के बपतिस्मे के विषय में ही सिखाया गया, और वे तो पिंतेकुस्त के दिन के विषय में भी कुछ नहीं जानते। तब तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। मित्र, ध्यान दीजिए, इन लोगों ने बपतिस्मा तो पाया परंतु बचाए नहीं गए, अर्थात उनको उद्धार का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उनके पाप क्षमा नहीं हुए, वे पाप से बचाए नहीं गए। प्रिय मित्र, जिस पल आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, आपके भीतर निवास करता है। आपके जीवन पर पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है और आप विश्वासियों के बदन अर्थात कलीसिया में सम्मिलित हो जाते हैं। ये उसी क्षण होता है जब आप मसीह पर विश्वास लाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह पर, उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास लाते हैं। आप विश्वास लाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के कारण मारे गए और परमेश्वर ने उन्हें आपको धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जीवित किया है। प्रेरित पौलुस ने इस रहस्य का पता लगा लिया कि उनको उद्धार का अनुभव नहीं हुआ है। पौलुस ने उन्हें बताया कि मसीह पर विश्वास लाने का उद्देश्य उद्धार पाना है, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। मेरे मित्र, मसीही होने का अर्थ है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। यदि आपने उद्धार का अनुभव नहीं प्राप्त किया है तो आपका मसीही कहलाना व्यर्थ है, धोखा है। विश्वास का अर्थ है उद्धार पाना, क्योंकि यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि खोए हुओं को ढूंढें, और उन्होंने अपना प्राण इसलिए दिया कि पापी व दुष्ट जन अपने पाप में जीवन से मुक्ति प्राप्त करें, अर्थात शैतान के बंधनों से छूट जाए। तब चौथे और पांचवें पदों में यहां पर बताया गया है, इस पर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। सो यहां पढ़ते हैं कि जब पौलुस ने उनसे पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया, तो उन्होंने कहा यूहन्ना का, और तब पौलुस उनको मन फिराव के विषय में और यीशु मसीह के विषय में बताते हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप अर्थात मन फिराव का बपतिस्मा था। ये राजा प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी का बपतिस्मा था, और जब अपोल्लोस ने उन्हें बपतिस्मा दिया उस समय वह स्वयं भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में भली भांति नहीं जानता था, और इसलिए उन्हें उद्धार नहीं मिला, उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकी, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनः बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार पौलुस उनके बपतिस्मे में सुधार करते हैं। प्रिय मित्र, हो सकता है कि आपको भी सुधार की आवश्यकता हो, आपको भी अपने मन को जांचने की आवश्यकता हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पापों से मुक्ति का बपतिस्मा है, और इसी के साथ बपतिस्मा का मिलना आपके उद्धार की पुष्टि करता है। ये वास्तविक हृदय व जीवन परिवर्तन है। तब 6 और 7 पदों में हमको बताया गया है, जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने तथा नबूबत करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। मित्रवर, भिन्न भिन्न भाषाएं उस समय के लिए चिन्ह के रूप में थे। दूसरे शब्दों में, उन लोगों को भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के मध्य मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना था। अब इसमें पौलुस 12 व्यक्तियों के द्वारा कलीसिया की सेवा आरंभ करते हैं, और यह सत्य है कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थुस तथा इफिसुस नगरों में महान सेवकाई की। तब अग्रिम पदों में बताया गया है, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निर्भीकता से बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में तर्क वितर्क करता और उन्हें समझाता रहा, परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं सुनी और भीड़ के सामने इस पंथ को बुरा भला कहने लगे, तो वह चेलों को लेकर उनसे अलग हो गया और तरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क करता रहा। श्रोता, 10वें पद में लिखा है, 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा जिससे कि वे जो एशिया में रहते थे, यहूदी तथा यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। प्रिय मित्र, यहां हम तरन्नुस की पाठशाला के विषय में पढ़ते हैं। तरन्नुस की पाठशाला, ये इफिसुस का निवासी था। इसका नाम तरन्नुस था। अपना एक स्कूल इसने खोल रखा था। यही स्कूल, यही पाठशाला तरन्नुस की पाठशाला कहलाती थी। ये व्यक्ति संभवतः साहित्य और दर्शन शास्त्र का शिक्षक था, यहूदी व्यवस्था का शिक्षक था, और व्यक्तिगत रूप से लोगों को शिक्षा दिया करता था। उसने पौलुस को अपनी पाठशाला में बोलने की अनुमति प्रदान कर दी। पौलुस ने 2 वर्ष तक इस अवसर का लाभ उठाया। फलस्वरूप संपूर्ण एशिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुन लिया, क्योंकि इस पाठशाला में भिन्न भिन्न स्थानों से, एशिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आया जाया करते थे और ज्ञान की बातों को सुना करते थे। इस प्रकार तरन्नुस की पाठशाला अनेक कलीसियाओं के अस्तित्व का साधन बन गई। अनेक कलीसियाएं इस तरन्नुस की पाठशाला के कारण स्थापित हो गईं। कुलुसियों की कलीसिया इसी का परिणाम है। संभवतः एशिया की 7 कलीसियाएं प्रेरित पौलुस के प्रचार का परिणाम है, और इस प्रकार इफिसुस नगर का सुसमाचार के क्षेत्र में एक महान योगदान है। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, और पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता था, यहां तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रूमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। मित्र, यूनानी भाषा में यहां ड्यूनामिस, DUNAMIS, ड्यूनामिस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य अंग्रेजी भाषा में डायनामाइट शब्द से है, और हिंदी में हम सामर्थ्य शब्द से कहकर पुकारते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामर्थ्य के कार्य, क्योंकि यहां डायना देवी का विशाल मंदिर था और निसंदेह वहां परमेश्वर की उपासना तो नहीं होती थी, और इसलिए उस मंदिर के कारण परमेश्वर ने पौलुस को विशेष सामर्थ्य प्रदान की, जिससे कि वह उस प्रतिमा पूजक नगर में जीवित परमेश्वर का प्रचार कर सके। और इस सामर्थ्य के द्वारा, पौलुस के कार्यों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को, जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य को वहां के लोग पहचान सके, जान सके। तब 13वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु झाड़ा फूंसी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों पर प्रभु यीशु के नाम का उपयोग करने का प्रयत्न कर ये कहकर करने लगे, मैं तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूं जिसका प्रचार पौलुस करता है। और इस्किवा नामक एक यहूदी मुख्य याजक के सात पुत्र ऐसा ही कर रहे थे, परंतु दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? प्रिय मित्र, अन्य लोग भी पौलुस की नकल करने लगे हैं और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग अपने व्यवसाय को चलाने के लिए करने लगे। स्मरण रहे, प्रभु यीशु मसीह का नाम व्यापार के लिए नहीं, ये उद्धार के लिए है, मुक्ति के लिए है, और इसलिए उसका गंभीर परिणाम भी हो गया। अग्रिम पदों में देखें, यहां लिखा है इस्किवा नामक एक यहूदी मुख्य याजक उसके साथ पुत्र यही कार्य करने लगे, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे और कहने लगे कि उस यीशु मसीह की शपथ दिलाता हूं जिसका प्रचार पौलुस करता है। परंतु दुष्ट आत्माओं ने उनको क्या उत्तर दिया? दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, पर तुम कौन हो? प्रिय मित्र, इस जानने का अर्थ विश्वास से नहीं, इस जानने का अर्थ विश्वास से नहीं है। दुष्ट आत्मा का ये कहने का अर्थ कि पौलुस को जानती हूं, यीशु को पहचानती हूं, इसका अर्थ विश्वास से नहीं लगा सकते। यूनानी भाषा में जिनोस्को, जी आई एन ओ एस को, जिनोस्को शब्द का प्रयोग हुआ है इस स्थान पर, जिसका अर्थ है साधारण रूप से जानना। और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रभु यीशु का नाम व्यवसाय के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये नाम उद्धार अर्थात मुक्ति दिलाने वाला नाम है और इस बात को दुष्ट आत्माएं भी जानते हैं। तो अग्रिम पदों में हमको बताया गया है ये बात, इफिसुस के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी, वह सब लोगों को मालूम हो गई, उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई होने लगी। उन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया। बहुत से लोगों ने जो जादू टोना किया करते थे अपनी अपनी पोथियां लाकर इकट्ठा की और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मूल्य आंका तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। और इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ फैलता और प्रबल होता गया। मेरे मित्र, इस घटना की चर्चा के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम भी उस प्रतिमा पूजक नगर में फैल गया। उन्होंने सत्य के विषय में जान लिया। इफिसुस एक बड़ा नगर था और नगर इस घटना से हिल गया और लोगों पर बड़ा भय छा गया, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने प्रेरित पौलुस की साक्षी थी और यीशु मसीह की साक्षी थी और उसने कहा कि मैं उनको जानती हूं लेकिन तुम कौन हो? मित्र, उस समय जो सामर्थ्य के कार्य तथा आश्चर्य कर्म प्रेरितों द्वारा किए जाते थे वे वर्तमान समय के आश्चर्य कर्मों से पूर्णता भिन्न थे। पौलुस के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों से इफिसुस नगर हिल गया और लोगों पर भय छा गया और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिली। जादूगरों ने मसीह की सामर्थ्य को स्वीकार किया, वे जान गए कि हमारे पास जो शक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के सामने निम्न स्तर की है और प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया। ये समस्त कार्य प्रभु के वचन को आगे बढ़ाने में सहायक बनते गए। आज भी जहां आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा वचन को फैलाने में सहायता करते हैं, परंतु आज हमारे पास परमेश्वर का संपूर्ण प्रकाशन पवित्र बाइबल हमारे हाथ में है। इसके पश्चात परमेश्वर को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अब तो इस पुस्तक की बातों को पूर्ण होने का समय है, इसमें जोड़ने का समय नहीं। मित्रवर, पवित्र बाइबल हमें युग के अंत तथा नए युग के आरंभ तक के विषय में बताती है। अब इसके अतिरिक्त और क्या शेष हो सकता है जिसकी मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है? तब 21वें पद में हमको इस प्रकार से बताया गया है कि जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने अपनी आत्मा में मैसिडोनिया और अखाया से होते हुए यरूशलेम जाने का संकल्प किया और कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। अतः जो उसकी सेवा करते थे उनमें से दो को अर्थात तिमोथियस और इरास्तुस को मैसिडोनिया भेजकर वह स्वयं कुछ समय के लिए एशिया में रहा। 21वें पद में जब ये समस्त घटनाएं घट चुकी हैं, तब पौलुस ने अपनी तीसरी यात्रा के समय रोम जाने का निश्चय किया है। परंतु जिस प्रकार से पौलुस ने वहां जाने की योजना बनाई थी, वह उस प्रकार रोम नहीं गए। इस विषय में हम अपने अग्रिम अध्याय में देखेंगे कि वो किस प्रकार से रोम पहुंचे हैं। मेरे मित्र, यही वो समय था जब पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को पत्र लिखा, और ये स्पष्ट है कि तिमोथियस तथा इरास्तुस के द्वारा वे पत्र वहां पहुंच गए। यद्यपि ये पत्र कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए लिखा गया था, परंतु ये मैसिडोनिया की कलीसिया के पास पहुंच गया, और इस पत्र में फिलिप्पी, थिस्लुनिके, अखाया, एथेंस तथा कुरिन्थुस नगर की कलीसिया के लिए संदेश था। और इस पत्र में पौलुस ने लिखा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार इफिसुस नगर में सुसमाचार के लिए द्वार खोला है, परंतु साथ ही वहां अनेक समस्याएं भी थीं, और हम देखेंगे कि वे समस्याएं और बाधाएं शैतान की ओर से थीं, क्योंकि इफिसुस नगर में परमेश्वर की उपासना नहीं होती थी। मित्रवर, जहां तक परमेश्वर का प्रश्न है, वह समस्त सृष्टि का एक ही परमेश्वर है, समस्त मानव जाति के लिए एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो किसी नगर, प्रदेश, क्षेत्र व देश में नहीं बदलता। परंतु जहां तक देवी देवताओं का प्रश्न है, वे प्रत्येक क्षेत्र, नगर, देश, प्रदेश, जाति, धर्म के अनुसार बदलते रहते हैं, और यही धार्मिक झगड़ों का कारण होता है। यही भिन्नता और अनेकता का भी आधार है। इसी के कारण एक व्यक्ति दूसरे से घृणा करता है। इसीलिए मनुष्य सीमित तथा संकुचित होता जाता है। स्मरण रखिए, परमेश्वर एक है, परंतु देवी देवता अनेक हैं। जो एक है, वही एकता का आधार है। तब 23वें पद में हम पढ़ते हैं, इन दिनों में इस पंथ के विषय में बड़ा उपद्रव हुआ। यहां लिखा है कि इस समय तक लोग प्रवेश मसीह के अनुयायियों को, अर्थात कलीसिया को, पंथ के नाम से पुकारते थे। अभी तक कलीसिया को मसीही नाम से संबोधित नहीं किया गया था। वास्तव में इसे कोई सामुदायिक नाम नहीं दिया गया था। यह केवल पंथ कहलाता था, और दूसरे शब्दों में आप इसे जीवन का मार्ग अथवा ढंग कह सकते हैं। यह वास्तव में जीवन का नया मार्ग अर्थात ढंग था। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे जिन्होंने स्वयं बताया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। तब अग्रिम पद में पढ़ते हैं, क्योंकि डेमेत्रियस नाम का एक सुनार था जो अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत व्यवसाय दिलाता था। उसने उन्हें और इसी प्रकार का धंधा करने वाले कारीगरों को एकत्रित करके कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि हमारी संपन्नता इसी धंधे पर निर्भर है, और तुम देखते और सुनते हो कि न केवल इफिसुस में बल्कि लगभग संपूर्ण एशिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझा बुझाकर और ये कहकर बहका लिया है कि वे जो हाथ के बनाए हुए हैं, ईश्वर हैं ही नहीं। मित्र, डायना अर्थात अर्तिमिस देवी का मंदिर प्रतिमा पूजा का मंदिर था। यह व्यापार का केंद्र था, और वास्तव में यह उस समय का बैंक था। यह पाप का केंद्र भी था। इसके चारों ओर घोर अनैतिकता ने जन्म ले लिया था। मित्रवर, यह सत्य है कि जितना धर्म अपने स्तर से नीचा गिर सकता है, उतनी कोई वस्तु नहीं गिर सकती। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वह अपने विश्वास लाने वालों को धार्मिक नहीं बल्कि धर्मी बनाते हैं, जिसे हम राइचस भी कह सकते हैं। मनुष्य का धर्म हमें धार्मिक बनाता है, परंतु परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। आपको इस अंतर को समझना और इसको, इस पर ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। अर्तिमिस का मंदिर प्राचीन काल के 7 आश्चर्यों में से था। ये यूनान के सबसे विशाल मंदिरों में से था। ये अति सुंदर तथा कलाकृतियों द्वारा सजाया गया था, परंतु डायना अर्थात अर्तिमिस की प्रतिमा बहुत घृणित थी। वह यूनान की देवी डायना के समान सुंदर नहीं थी। यह अति क्रूप थी, अशिष्ट अवस्था में थी। डेमेत्रियस नाम का सुनार ठेकेदार था। वह इसकी चांदी की मूर्तियां बनवाकर बेचने के लिए ठेका लेता था। यह वास्तव में बड़ा व्यवसाय था। पौलुस की सेवकाई उसके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न कर रही थी। ये नशीले पदार्थों के व्यवसाय जैसा था। नशीले पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं और उनका व्यवसाय लोगों को आत्मिक हानि पहुंचा रहा था, परंतु जिस प्रकार मादक पदार्थ बेचने वाले उसकी हानि की ओर कोई ध्यान नहीं देते, वो तो केवल अपने व्यवसाय में ही रुचि रखते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी किसी के आत्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं रखते थे। उन्हें तो केवल अपने व्यवसाय की चिंता थी। पौलुस की शिक्षा उनके व्यवसाय को हानि पहुंचा रही थी, इसलिए उसने पौलुस का विरोध किया और लोगों को भड़काया कि वे जो शिक्षा दे रहे हैं उनकी शिक्षा हमारे विरोध में है। वो कहते हैं कि हाथ के बनाए हुए ईश्वर हैं ही नहीं। इससे न केवल ये डर है कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहे, वरन ये भी कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा तथा जिस देवी की पूजा एशिया और संसार के सब लोग करते हैं वह अपने ऐश्वर्य से गिरा दी जाएगी। जब उन्होंने ये सुना तो क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की देवी अर्तिमिस महान है। मित्रवर, वास्तव में इनमें से कोई भी भक्त नहीं था, सब धंधा करने वाले व्यक्ति थे। इनकी रोटी पानी का चक्कर था। सब जो इस धंधे को करते थे एक मन हो गए। आप इन पदों पर विशेष ध्यान दें। वे चांदी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाते और उन्हें बेचते थे। उनका अच्छा धंधा चल रहा था, जबकि ये मंदिर संसार के सात आश्चर्यों में से एक था, इसलिए विश्व के अनेक लोग यहां भ्रमण के लिए आते थे। और इसलिए ये लोग डायना की मूर्तियां बनाकर उन्हें बेचकर खूब धनवान हो गए थे। समस्त एशिया में डायना की पूजा करना आरंभ हो गई थी। इफिसुस एक व्यापारिक तथा धार्मिक केंद्र होने के कारण पूर्वी तथा पश्चिमी देशों का मिलन स्थल बन गया था और सभी स्थानों की बुराइयों को इसने अपना लिया था। डेमेत्रियस के भाषण का लोगों पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने पौलुस के दो साथियों को पकड़कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। प्रिय मित्र, आज हम यहीं पर ठहर जाते हैं। अगले कार्यक्रम में इसी विषय के साथ पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दें।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। हमारा ईमेल एड्रेस है hindittv@radiovv.org, hindittv@radiovv.org। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।